تفسیر. تو انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان آیات کی تفسیر کو پڑھیں گے. سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم حقیقت جو ہے اس کو بیان کیا ہے. من کانا یریدو حرث الآخرتی نزد لہو فی حرثہ ہی, جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں. ومن کانا یریدو حرث الدنیا نوتہی منہا, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیچھے والی آیت میں, آیت نمبر 19 میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں رزق بانٹتا ہے تو اللہ کا قاعدہ کیا ہے رزق دینے کا, اللہ کی سنت کیا ہے. اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس اپنے رزق اور اپنے فضل سے صرف انہی کو نوازے جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں, مدد کرنے والوں دونوں کو رزق دیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے, جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو بد لوگ ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو آیت نمبر 20 میں مزید اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جو جب رزق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے اور اللہ کا طور طریقہ کیا ہے. فرمایا جو شخص آخرت کے لیے جتنی کوششیں کرے گا اس کا اتنا ہی حصہ پائے گا. من کانا یریدو, یہ جو من کانا یریدو ہے اس کے اندر نیت آتی ہے کہ جو شخص بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو اس کی نیت کا کیا ہے. من کانا یریدو, جو شخص چاہتا ہے اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, اس کا گول کیا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے. حرثل آخراتی, آخرت کی کھیتی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حرث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. ہا را سا جو ہے یہ کھیتی کو بھی کہتے ہیں, اور کھیتی کے اندر ہل جوتنا, بیج بونا, اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کھیتی کے لیے بھی اور کھیتی کے اندر بیج بونا, اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. حارث جو ہے وہ کسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ ایک صحابی کا نام بھی ہے. اور یہاں پہ اعمال کے آثار اور نتائج مراد ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کانا یریدو حرث الآخرتا آخراتی, جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی آخرت میں اپنے اعمال کے آثار دیکھنا چاہتا ہے, آخرت میں اپنے اعمال کے نتائج چاہتا ہے, وہ اپنی کوششوں کا نتیجہ, فائدہ, اجر اور ثواب جو ہے وہ آخرت میں چاہتا ہے. تو یہاں پر ویسے تو حرث جو ہے کھیتی اور بیج بونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہاں پہ استعارے کے طور پر اعمال کے ثمرات اور فوائد کے لیے آیا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال اور محنت کے ذریعے سے آخرت کا اجر اور ثواب چاہتا ہے, آخرت کی جو ثواب ہے یا نتیجہ ہے وہ اس کا طالب ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, نمبر ایک نزد لہو, نزد لہو فی ہر سے ہی, تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں. یہاں پہ نزد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نزد کے معنی کیا ہیں کہ ہم بڑھاتے ہیں, ہم زیادہ کرتے ہیں, نون ہم کے لیے ہے, اور زیادہ یزیدو زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بڑھانے کے لیے. यहाँ पे इसके दो मानी हैं। नंबर एक, दुनिया में भी अल्लाह फ़ायदा देता है और आखिरत में भी उसको जो है वो फ़ायदा देंगे। तो नज़ीद के मानी क्या हैं? अल्लाह उसकी उसके अमाल का बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देगा। आखिरत के लिए तो पता है ना, खैरों व अबका के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह आपको पता है ना कि अल्लाह ताला कितना बढ़ा कर देते हैं, कि अगर आप एक लफ्ज पढ़ती हैं हा मीम, ये दो हो गए तो एक लफ्ज की 10 नेकियां सवाब मिलेगा, तो दो लफ्ज पढ़े तो 20 नेकियां, तो अल्लाह ताला 10 गुना अजर देता है। और आपने वो भी पढ़ा कि अल्लाह ताला 700 गुना अजर देता है, वो आपने पढ़ा था ना, हर बाली में 100 दाने, और इस तरह अल्लाह ताला जो है उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ क्या है कि दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका जो है वो अजर देंगे। दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है वो ये है कि इखलास जितना ज़्यादा होगा तो अजर जो है वो 1 से लेकर 10 गुना, फिर 70 गुना, फिर 100, फिर 700 गुना, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा। तो इरादा है आखिरत के लिए कोशिश करने वाला हो। तो नज़ीद के अंदर दूसरी बात जो है, कैफियत कमियत मुद्दत के एतबार से जो है वो रिज़ल्ट निकलेगा। और सूरत अल बकरा आयत नंबर 261 को भी आप सामने रख सकती हैं। बड़ी खूबसूरत है ये आयत कि मन काना युरीदु हरसल आखिरती नज़ीद लहू फी हरसे ही, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है इस बात की कि अपने आप को कमिटेड बनाएं आखिरत के लिहाज से, अपनी नियतों में इखलास पैदा करें और क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे गौर करें। मसलन आप कहती हैं कि मैंने इतने नवाफिल पढ़े, लेकिन उन नवाफिल की कैफियत क्या थी कि आपने रुकू के अंदर सही से जो है वो तस्बीह भी नहीं पढ़ी, सुभान रब्बी, और रुकू जब किया अभी पूरी तरह नहीं किया था कि आप खड़ी हो गई, क़याम पूरा नहीं किया था कि आप सजदे में चली गई, उठक बैठक जिसमें अल्लाह को कम ही याद किया। तो यानी अल्लाह को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ज़रूरी है इस बात के लिए कि जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं। तो कौन बढ़ाता है? अल्लाह ताला। फिर आप देखिए ये दूसरा हिस्सा जो है आयत नंबर 20 का, वमन काना युरीदु हरसद दुनिया, और जो दुनिया की खेती चाहता है, नू तही मिन्हा, अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि हम उसे दुनिया ही में दे देते हैं, कि जो शख्स दुनिया के लिए जितना पागल हो जाएगा तो जितनी दुनिया उसके मुकद्दर में है ना, बस उतनी ही दुनिया मिलेगी। ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई शख्स अपना पूरा वक्त दुनिया में दुनिया कमाने के लिए लगा दे तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो शख्स जितनी दुनिया चाहता है अल्लाह उतनी ही उनको दे दे। ये अल्लाह की मर्जी है कि बस जो जितना उसके नसीब का है, जितना अल्लाह ताला उसको देना चाहेंगे, बस अल्लाह उतना ही उसको जो है वो देगा। तो तालबे दुनिया को दुनिया उतनी मिलती है जितनी अल्लाह की मशीयत है, जितनी अल्लाह की तकदीर है, तालबे दुनिया की चाहत के मुताबिक नहीं मिलती। वमन काना युरीदु हरसद दुनिया, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है, नू तही मिन्हा, हम देते हैं उसको दुनिया की ज़िंदगी में कितना, जितना अल्लाह चाहता है, लेकिन वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो साथ ही ये ऐलान कर दिया कि आखिरत में इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो शख्स जो है वो आखिरत के लिए खेती को बोता है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया उसे नहीं मिलेगी, दुनिया थोड़ी ज़्यादा जितनी अल्लाह ने उसके नसीब में लिखी है वो तो अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह का तरीका क्या है कि नेक और बद सबको रिस्क देता है। तो यहाँ पे जो खुशखबरी दी है अल्लाह ताला ने आखिरत की खेती को बढ़ाने के लिए दी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आखिरत की फ़िक्र की जाए और आखिरत की खेती जो है उसको कई गुना बढ़ाया चढ़ाया जाए और उसके लिए तरीके ट्रिक सोची जाए। जैसे दुनिया में आप सोचती हैं, मसलन आप बिज़नेस करती हैं, बिजनेस वुमेन है, आप जो है सोचती हैं कि आपने पिज्जे की दुकान खोली है, कोई भी पिज्जे की चेन है, एक दुकान के बाद आप चाहती हैं कि अच्छा मेरी अब न्यूयॉर्क है या टोरंटो है तो इसके हर जगह पे वो हो जाए, है ना। फिर आप क्या चाहती हैं कि अब दूसरी स्टेट्स में भी इसको होना चाहिए, फिर आप कहती हैं कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में हो जाना चाहिए। जैसे बहरेन में मैं अपनी एक स्टूडेंट को जानती थी कि परफ्यूम की उनकी दुकान थी, और फिर उसके बाद बहरेन के अंदर उनकी हर अहम जगह पे, फिर पूरे गल्फ के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पे यानी मगरिब की दुनिया में उनकी दुकान है। फिर उसके अभी पिछले दिनों मुझे इतफाक हुआ था, जब 2-4 साल हो गए उमरा करने का, तो मैं देख रही थी जब जद्दा एयरपोर्ट से हम मक्का की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बड़े बड़े उनके परफ्यूम्स के जो थे वो लगे हुए थे, जो साइन होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लगे होते हैं। तो आप देखें कि इसी तरह एक डॉक्टर है, एक क्लिनिक के बाद दूसरा क्लिनिक, तीसरा क्लिनिक, चौथा क्लिनिक, और वो क्या कहता है और इन लोग क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल के बाद दूसरा। तो आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो और उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई MBA वाला हम हायर कर लेते हैं, कोई मैनेजर होना चाहिए, कोई किसी को समझ होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, आप उसकी टेक्निक्स को आप जानते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ज़रूरत है इस बात की कि हम आखिरत की खेती को बढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं, जो कुरानो सुन्नत से मिलती हैं, जो सहाबा सहाबियात की ज़िंदगी से मिलती हैं, हम उन्हें समझें। मसलन नंबर एक, नेक नियति, नेक नियति के साथ। नंबर दो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। नंबर एक, इखलास नियत, नेक नियति। नंबर दो, कुरान के मुताबिक। नंबर तीन, रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। नंबर चार, अमले स्वाले होने चाहिए। नंबर पांच, फिर जितना ज्यादा वक्त आप अमले स्वाले में गुजारेंगे। फिर नंबर छः, आपके ज़राए पाक होने चाहिए, यानी आपका रिज्क जो है वो हलाल होना चाहिए, रिज्क हलाल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर दे कि जिनके लिए अल्लाह ताला जो है दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है, और हमें उन बदनसीबों में शामिल ना करे कि बस जिन्हें दुनिया में तो मिलेगा लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ही बदनसीब हैं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 21 से लेकर 36 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े किया है कि मुशरिकीन ने अपना एक अलग दीन बना लिया है और ये दीन अल्लाह के यहाँ काम आने वाला नहीं है। आपने पिछली 20 आयात में ये पढ़ा कि अल्लाह ने बताया कि असल दीन क्या है, अंबिया का जो दीन था, जो दीन तौहीद था, जो दीन अल्लाह था, वो क्या था। अल्लाह ताला ने पिछली आयात में वो बताया और आपने पढ़ लिया कि दीन क्या है और कौन से ईमान और अमले सवाले अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दीन पर तबसरा किया है कि ये काम आने वाला नहीं है, और साथ ही उनके इतराजात के जवाबात दिए हैं। और इसके साथ ही एक दिन तो मुशरिकीन ने घड़ा था और आज मौजूदा दौर में भी मगरिब की दुनिया में या मशरिक की दुनिया में भी लोगों ने ज़िंदगी गुजारने के अपने तौर तरीके इख्तियार कर लिए हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत के दिन ये चीज़ें काम आने वाली नहीं हैं। अम लहुम शुरका शराउ लहुम मिनद्दीनी मालम याज़म बिहिल्लाह, क्या ये लोग ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकरर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज्न नहीं दिया। अम लहुम शुरकाउ, अब यहाँ पे आप देखें कि सवालिया अंदाज है और अम से अल्लाह ताला ने बात को शुरू किया है, और अम जो है, अम के मानी क्या हैं, अम के मानी हैं क्या। लहुम, अब यहाँ पे शिर्क करने वाले जो मक्का के लोग थे उनको कहा जा रहा है, और आज के दौर के भी जो मुशरिक हैं वो इसमें शामिल हैं, कि क्या इन मुशरिकीन के लिए शुरकाउ शरीक हैं। शराउ लहुम, मुकरर किया इन्होंने इनके लिए मिन दीने से ऐसा दीन, क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक तरीका बना दिया। जैसे मसलन मुशरिकीने मक्का जो थे उनके बुत थे, देवियां थीं, और अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बुतों ने, तुम्हारी देवियों ने, जो तुम्हारे शरीक हैं, क्या उन्होंने कोई जाब्ता हयात मुकरर कर दिया है? क्या उन्होंने जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तुम्हें दे दिया है? अम लहुम शुरकाउ, क्या इनके हैं कुछ ऐसे शरीक जिनको वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं? शराउ लहुम, जिन्होंने घड़ रखा है, बना रखा है, जिन्होंने मुकर्रर किया है इनके लिए, मिनत दीनी, दीन दीन में से, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका, मालम याजम बेहिल्ला, जो नहीं हुक्म दिया उसका अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने तो वो जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताया, अल्लाह ने तो उसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन इन्होंने जो है अपने शरीकों से, और यहाँ पे शरीक से मुराद बल्कि कौन लोग हैं? ऐसे इंसान कि जिनके सिखाए हुए अफकार, अकायद, नजरियात पर लोग ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो उसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन ये इन अपने शरीकों के बताए हुए दीन के पीछे चलते हैं। जैसे आज भी देखें कि बहुत सी चीज़ों में आप कहते हैं कि कनाडा में ऐसा है, न्यूयॉर्क में ऐसा है, या हमारे ख़ानदान में ऐसा है, और फलां ऐसा कहता है, तो अपनी मर्जी इंसान करना चाहता है। वलौला कलिमतुल फसली लक़ुदिया बैनहुम, अगर फैसले की बात पहले तय न हो गई होती तो इनका कजिया चुका दिया जाता। अल्लाह ताला कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं ये बात, कि अल्लाह ताला ने पहले ही ये बात जो है वो तय कर दी है कि अजाब कब आएगा, कि कयामत कब आएगी, और उसके साथ जो है अल्लाह ताला ने ये फैसला भी कर लिया है कि अल्लाह ताला दुनिया में किसी को कितनी मोहलत देंगे। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के उस फैसले के मुताबिक जो है ये काम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अजाब मांगे तो अजाब आ जाए, और ऐसा नहीं हो सकता कि इनके गुनाह करने पर फौरन जो है वो सजा दे दी जाए। तो कयामत का वक्त भी मुकर्रर है और अजाब का वक्त भी मुकर्रर है। वह इन ज़ालिमीन अलहुम अजाबुन अलीम, यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो कौन जालिम है? जो अल्लाह के दिए हुए दीन पर अमल करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात की पूजा करते हैं, नंबर दो जो शिर्क करते हैं, और नंबर तीन जो है जो अपनी मनमानी करते हैं। तरस ज़ालिमीन मुशफिकीन मिम्मा कसबू वहुआ वाकिउम बेहिम, तुम देखोगे ये जालिम उस वक्त अपने किए अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला का जो अंदाज़ है बताने का, ये बड़ा ही सख्त है कि जब कयामत आएगी और फिर जब आखिरत भरपा होगी, तो वहाँ पे जो शिर्क करने वाले हैं, जो जालिम हैं, वो अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे, अपने अमाल के अंजाम से वो डर रहे होंगे। मुशफिकीन मिम्मा कसबू, वो डर रहे होंगे जो उन्होंने कमाई की है। वो सोचेंगे फलां वक्त में फलां बात क्यों कही थी, फलां वक्त में फलां झूठ क्यों घड़ा था, अल्लाह की आयत मेरे सामने आई थी उसको क्यों झुठलाया था, अपनी मनमानी क्यों की थी। और इसमें हर नाफरमान शामिल है। जालिम से मुराद शिर्क करने वाले भी हैं और गुनाहगार और अल्लाह के नाफरमान सभी शामिल हैं। और कमाई से मुराद गुनाहों की कमाई है, बुरे अमाल हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं वहुआ वाकिउम बिहिम, ये अंदाज़ जो है ये बड़ा ही जैसे ताकीदी अंदाज़ है कि अजाब जो है इन पर पड़ कर रहेगा, अजाब इन पर वाक़िया हो कर रहेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अजाब जो है वो इन पर ना आए, वो डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं आ ना जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब बच जाए, नहीं, वो ज़रूर इन पर आकर रहेगा। ये तो थे मुनकरीन। वल्लज़ीना आमनू, रहे वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए, फी रउदातिल जन्नात, वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। यहाँ पे कुरान का अंदाज़ जो है बड़ा ही खूबसूरत है। आम तौर पे अगर आप देखें तो कुरान में हमें जन्नत का जिक्र मिलता है कि वो जन्नत में होंगे। अब यहाँ पे जब अल्लाह ताला मैदाने मैशर के एक मंजर को पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा कि वो जन्नत के रौदात में होंगे। तो जन्नत वाहिद है और जन्नत जमा है, बागात को कहते हैं, रौदा वाहिद है, रौदात इसकी जमा है। रौदा जो है बाग के अंदर की वो क्यारी होती है, बाग के अंदर की अंदर का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा पुरबहार होता है, जरखेज, वुसत वाला, फराखी वाला, और जो अपने रंग, फल, फूल, उनकी शादाबी, तरोताजगी, हुसन, जवानी, जौबन की वजह से सबसे बेहतरीन होता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए, ईमान और अमले सवाले रखने वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है कि वो एक तरफ तो बागात में होंगे, और बागात में ही नहीं बल्कि फिर वो रौदात में होंगे, जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। आप देखें कि आप जहाज़ पे जाती हैं तो एक फर्स्ट क्लास पोर्शन होता है और दूसरा जो है जिसमें आम पैसेंजर जो हैं वो बैठते हैं। इसी तरह ट्रेन में भी ऐसा ही होता है ना। इसी तरह यहाँ पे जन्नत जो कि अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए तैयार कर रखी है, जिसमें हर तरह की खुशियाँ, मोहब्बतें, मुसरतें और अमन, सुकून, प्यार, चैन मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि ईमान और अमले साले रखने वालों को वहाँ पे जो है बहुत ही आला जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा, बहुत ही आला मकाम में उन्हें जो है वो बिठाया जाएगा। और सहाबा जो है इस जन्नत का बहुत शौक रखते थे और उनका ईमान इतना खूबसूरत था कि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जन्नत हमारी आंखों के सामने है, वो ऐसे तसव्वुर करते थे। और फिर मुश्किलात के पहाड़ उनके लिए रेत के टीले बन जाते थे। फिर इस जन्नत की लगन जो है वो उन्हें बहादुर बना देती थी, उनमें उनमें नज्म व ज़ब्त आ जाता था, उनमें इस्तकामत आ जाती थी, उनमें फ़र्ज शनासी आ जाती थी। फिर वो दुनिया को ठोकर मार के आखिरत के लिए जो थे वो जुत जाते थे। प्यारी बहनों, मैं आपसे पूछती हूँ, ये जन्नत इस तरह जिंदा और नकद हमारी आंखों के सामने क्यों नहीं आती? कहाँ कमी है? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ग़ज़वाए उहद के दिन एक शख्स ने रसूल अल्लाह से पूछा कि अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँ तो आपका क्या ख्याल है, मैं कहाँ जाऊँगा? आपने फरमाया, जन्नत में होगे। बस उसने जब ये बात सुनी, उसके दिल की ऐसी कैफियत हुई, उसको जन्नत का ऐसा शौक हुआ कि वो खजूरें खा रहा था। उसने उन खजूरों को जो उसके हाथ में थी वो फेंक दी। इतना भी गवारा नहीं किया कि उसको वो मुंह के अंदर डाले, उनको फेंक दिया। कहने लगा कि इतनी देर भी नहीं करना चाहता। और फिर वो दीवाना वार लड़ा, जिहाद में शामिल हुआ, यहाँ तक कि वो शहादत उसने हासिल कर ली। तो अब आप बताइए कि खजूरें खाते खाते जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गई। खजूरें खाते खाते जो हाथ में हैं, जो झोली में हैं, सोचते रहते हैं कि अच्छा मुझे तो तैयारी करनी है, हाँ फलां फलां जो है वो मुझसे नाराज़ है, मुझे मनाना तो है, अच्छा मैं मनाऊंगी, हाँ मुझे करने चाहिए अमले सवाले, हाँ मुझे जो है वो फ़राइज़ बाकायदगी से अदा करने चाहिए, हाँ हज मुझ पे फ़र्ज़ हो चुका है, हाँ मुझे हज करना तो है, अच्छा सोचती हूँ। तो क्या करते हैं कि ये आयात को पढ़ते हैं और सोचते हैं, सर को धुनते हैं, कभी दिल नरम होता है, कभी दो चार आंसू भी बह जाते हैं, फिर उसके बाद जो है दोबारा दुनिया के अंदर जो है वो खो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आइए अकीदाए आखिरत को मजबूत करें। अब तो कुरान मुकम्मल होने को आया, अब तो बिल्कुल कुरान के इख्तिताम के दिन हैं। आइए अपनी एक मुसलमान होने की पहचान बनाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो को आप में से कौन नहीं जानता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो की जहाँ पे हया बहुत मशहूर थी कि वो कंवारी लड़कियों से ज़्यादा हया करदार थे, दूसरी तरफ उनका जो है वो सदका और खैरात बड़ा मशहूर था कि गनी कहलाए, उनका नाम बन गया गनी। अब कुरान पढ़ने के बाद आपकी नेकियों की वजह से कोई कोई नेकी तो आपकी पहचान बननी चाहिए ना, कोई नेकी तो पहचान बने ना। सहाबा में तो एक नेकी नहीं, बहुत सी नेकियां उनकी पहचान थीं। हज़रत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह अन्हो जब हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में आबादी जब बढ़ गई तो मुसलमानों के लिए स्वीट वाटर नहीं था। शहर में एक ही कुआं था, बैर रूमा, पानी पीने के उसका पीने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस का उसका मालिक एक यहूदी था। वो पानी बेचा करता और गरीब मुसलमान वो पानी हासिल नहीं कर सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि कौन है जो कि इसमें मुसलमानों के लिए मदद करे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपील किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस यहूदी से बातचीत की कि किसी तरह वो कुआं बेचने पर आमादा हो जाए, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ आधा कुआं फ़रोख्त करूँगा, एक दिन तुम्हारी बारी होगी, दूसरे दिन हमारी, और उसके लिए 12,000 दिरहम कीमत लूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह शर्त मंजूर कर ली और आधा कुआं ख़रीद लिया गया। अब मुसलमान यूं करते थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी वाले दिन इतना पानी भर लिया करते कि वो दूसरे दिन के लिए काफ़ी हो। अब और इसमें मुसलमानों के लिए तंगी भी होती थी, मुश्किल भी होती थी, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब मुसलमानों की ये तकलीफ़ देखी तो उन्होंने उस यहूदी से कहा कि तुम दूसरा जो दिन है वो भी तुम मेरे हाथ बेच दो, और उसके लिए भी उसकी मुंह मांगी कीमत अदा की, और 8,000 दिरहम बताई जाती है। तो इस तरह टोटल 20,000, यानी पहले 12,000 फिर 8,000 देकर आपने कुआं ख़रीद कर, जो बेरे रुमा कुआं था वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, और आप देखें कि वो गनी कहलाए। उनके कई वाक़यात हैं ना। तो अब आप देखें ये जो उनकी कुर्बानी थी ये इनके ईमान बिन आखरत को ज़ाहिर करती है कि वाकई उन्हें यकीन था कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और मेरा अल्लाह जो है मुझे इसकी जो है वो जज़ा देगा। तो आप कहाँ खड़ी हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ, हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। वल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्वालिहाति फ़ी रौदातिल जन्नात, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत के बागात में होंगे। लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, बड़ी खूबसूरत है ये आयत, जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही बड़ा फ़ज़ल है, सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि आप छोटी होती होंगी और आपके भी कोई ख्वाब होंगे, आपने भी कुछ ड्रीम देखी होंगी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के साथी के लिए, अपने घर के लिए, और अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, शीश महल के अंदर रहते हैं, अफसानवी दुनिया में रहते हैं, नावल, अफसाने, फिल्में उनको हकीकत की दुनिया में आने नहीं देती है ना, और जो हकीकत की दुनिया में होते हैं वो भी जागते हुए ख्वाब देखते हैं। तो आप देखें कि आपके कितने ख्वाब अब तक पूरे हुए, आप बताएं कि आपके कितने ख्वाब पूरे, आप सोचें, सोचा क्या था फिर हुआ क्या, चाहा क्या था फिर मिला क्या, जो इंसान चाहता है वो तो नहीं मिलता ना, लेकिन जन्नत वो जगह है कि जो कुछ आप चाहेंगे वो अपने रब के यहाँ पाएंगे, इससे बड़ी जन्नत की नेमत और कोई नहीं हो सकती। आप उड़ते हुए परिंदों की तरफ देखेंगे, हदीस में आता है कि भुना हुआ गोश्त उनका जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप दरख्तों की तरफ देखेंगे जिन्हें फल लगे हुए होंगे और हमें पता चलता है कि दरख्त झुक जाएंगे, ये हमें कुरान और हदीस से पता चलता है, और ये है कि जो कुछ वो चाहेंगे वो अपने रब के यहाँ पाएंगे। और ये क्या है, ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही बड़ा फ़ज़ल है। ज़ालिकल्लज़ी, ये है वो चीज़, अल्लज़ी जिसकी, युबश्शिरुल्लाहु इबादहु, के जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है, अल्लज़ीन आमनु व अमिलु स्वालिहात, जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। इस बात की खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए और अमले सवाले किया। तो प्यारी बहनों, असल बात जो है वो ईमान लाने की है और अमले सवाले करने की है। ईमान और अमले सवाले का आपस में चोली दामन का साथ है, जैसे ईमान बीज है और अमले सवाले उससे निकलने वाले पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, शाखें हैं, टहनियां हैं। तो जितना बीज अच्छा होता है, जितना ईमान अच्छा होता है, तो उससे उतने ही अच्छे अमले सवाले के फल फूल जो है वो निकलते हैं। قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, आयत का जो ये हिस्सा है ये बहुत अहम है, और इसमें जो लफ्ज़ है अल-क़ुरबा, इसकी तफसीर में मुफस्सरीन के दरमियान बड़ा इख्तलाफ वाक़या हुआ। वैसे आप देखें इसका तर्जुमा क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दीजिए कि मैं इस काम पर तुमसे کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. تو چونکہ القربہ لفظ میں اختلاف ہے اس کے لیے مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا. نمبر ایک, ایک گروہ نے اس قرابت کو القربہ کو رشتہ داری کے معنی میں لیا ہے. آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ میں تم سے اس دین کے کام پر, اس دعویٰ پر جو پیغمبرانہ مشن ہے, میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا, مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اے اہل قریش تم لوگ کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے, چلو تم نے نہیں مان رہے, تم انکار کر رہے ہو, لیکن اتنا ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, مجھے اور کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. اِلَّا الْمَوَدَّةَ, مَوَدَّةَ کا لفظ آپ کو پتا ہی ہے, واو دال دال ود, یہ لفظ جو ہے یہ محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ود, اور یہاں پہ الْمَوَدَّةَ یہ مصدر استعمال ہوا ہے اور اسی سے ودود ہے. تو فرمایا کہ میں تم سے جو ہے وہ محبت چاہتا ہوں فی القربہ رشتہ داروں کی. تو رشتہ داری کی وجہ سے اگر تم نے اس کو قبول نہیں بھی کیا تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہو تو میری مخالفت نہ کرو, کم از کم مخالفت نہ کرو, اس طرح سے دشمنی نہ کرو جیسے تم کر رہے ہو. اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے, اور بکثرت راویوں کے حوالے سے ہمیں ملی ہے جس میں مسند احمد, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن جریر, تبرانی, بیہقی مختلف نے اس کو نقل کیا ہے, اور دوسرے اکابر مفسرین نے بھی بیان کیا ہے. دوسرا گروہ جو ہے قربہ کو قرب اور تقرب کے معنی میں لیتا ہے, جیسے قریب ہونا کسی کے قرب کے معنی میں لیتا ہے, تو اس کے مطابق پھر معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, لیکن کیا چاہتا ہوں, اللہ کے بعد کیا ہوگا, اللہ المودتا, لیکن میں چاہت چاہتا ہوں, محبت چاہتا ہوں فی القربہ, اللہ کا, اللہ کے قرب کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے, معنی یہ ہے کہ تو بس تم ٹھیک ہو جاؤ, بس یہی میرا اجر ہے, یہی میرا معاوضہ ہے. اور یہ تفسیر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ نقل کی ہے, اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی اس کی تائید میں آیا ہے, اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی اس کی تائید میں آتا ہے. اور سورت الفرقان کی آیت 57 جو ہے وہ بھی اس کی دلیل میں آپ نقل کر سکتے ہیں کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اچھا, تیسرا گروہ جو ہے وہ قربہ کو رشتہ داروں کے معنی میں لیتا ہے. پہلے گروہ نے کیا کیا تھا, اس کو قرابت رشتہ داری کے معنی میں لیا تھا. تھوڑا سا فرق ہے اس میں, ایک ہوتی ہے رشتہ داری اور ایک ہوتا ہے رشتہ دار, ہے نا. تو پہلے گروہ نے قرابت رشتہ داری کے معنی میں لیا تھا, تیسرے گروہ نے قربہ کو اقارب رشتہ داروں کے معنی میں لیا ہے, اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو. اور اقارب سے مراد جو ہیں بنی عبد المطلب ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری رائے ہے, یہ رائے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا جو مشن تھا, آپ کا جو بلند مقام تھا, تو اس بلند مقام پر رہ کر آپ لوگوں سے یہ اجر کیسے مانگ سکتے تھے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو یہ بات جو ہے, یہ بات کہ نبی قوم سے اٹھ کر کہے کہ میں تم سے جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, جبکہ یہ جو تفسیر ہے نا, یہ قرآن کی بہت سی آیات کے بھی खिलाफ है, उसे हटकर है, जैसे सूरत यूनुस आयत 72, सूरत हूद आयत 29 51, सूरत अशुरा आयत 109, 127, 145, 164, 180, इसी तरह सूरत यासीन आयत 21, और बेशुमार आयतों में आपने बार बार पीछे पढ़ा था ना, वमा अजरिया इल्ला लल्लाह, कि मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, मैं तो कोई अजर नहीं चाहता। तो ये नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि लोगों तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो जो मैं खिदमत कर रहा हूँ दीन की। आपने तो ये नहीं कहा कि उसके बदले में तुम मुझसे मोहब्बत करो। तो ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत ज़रूर चाहता हूँ। वमन यक्तरिफ हसनतन, और जो कोई भलाई कमाएगा, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम उसके लिए इस भलाई में खुद इजाफा कर देंगे। यहाँ पे यक तरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, काफ राफा इसका रूट है, मादा है, और ये बाबे इफ्तियाल से है यक तरीफ। और काफ राफा किर्फ जो है ये छिलके को कहते हैं, और करफा और इक तरफा इसके मानी हैं कमाई करना, नजायज तरीके से कमाई करना, और करफ जो है या काफरा फा के मानिए ज़ख़म का छिलका उतारना। अब आप देखें कि जब किसी को कोई ज़ख्म होता है और जब वो ठीक होने के करीब होता है, तो ज़ख्म जो है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्किन सी आने लगती है, खुजली भी होती है। तो बाज़ औक़ात जो मरीज़ होते हैं, जब वो ज़ख्म को छील लेते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, तो ज़ख्म ख़राब हो जाता है। तो अगर वो छिलके को रहने देते हैं तो ज़ख्म ठीक हो जाता है। तो एक तरफ़ा जो है ये बाब इफ्तियाल में जाकर मानी बन जाते हैं नजायज़ तरीके से कमाई करना। तो जो कोई वमई यक तरीफ हसनतन, अब आप देखें कि ज़्यादातर ये लफ्ज़ जो है वो बुरे काम करना, जैसे एक तरफ अगर आएगा तो बुरे काम करना, नजायज़ तरीके से करना, लेकिन कमाई के मानी में भी ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कमाई के मानी में है कि वमई यक तरीफ हसनतन, जो कोई भलाई का काम करेगा, अच्छी कमाई करेगा, नेकियाँ कमाई करेगा, नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना, तो हम उसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा करेंगे। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की दो सिफात जो हैं उनको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, और पहली सिफ जो है वो क्या है कि बेशक अल्लाह जो है वो बड़ा दरगुजर करने वाला है। इसके मानी ये हैं कि जो नेकी करने वाले लोग हैं, जो अतात करने वाले लोग हैं, उनके गुनाहों को बड़ा बख्शने वाला है। नंबर दो शुकूर, उनकी नेकियों का बड़ा कदरदान है, उसका बड़ा सवाब देने वाला है। अब उनके जो इतराजात थे, अब उनका जवाब दिया जा रहा है। अम यकूलूना इफ्तरा अल्लाह कज़बन, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बहतान घड़ लिया है। तो वो लोग जो थे वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को झूठ मूठ खुद घड़ा है, और कहते हैं कि अल्लाह ने नाजिल किया है। फ़ई यशा इल्लाहु यख्तिम अला कल्बिक, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे। इतने बड़े झूठ सिर्फ वही लोग बोलते हैं ना जिनके दिलों पर मोहर लगी होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें भी उन मोहर लगे हुए लोगों में शामिल कर दे, मगर उसका ये फ़जल है कि उसने तुम्हें इस ग्रोह से अलग रखा है। तो यहाँ पर अहले मक्का जो रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो अल्लाह ताला जो हैं वो बता रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता, यानी अगर प्यारे रसूल ने ऐसा किया होता, तो अल्लाह ताला प्यारे रसूल को मोहर लगे हुए, जिनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर देते। लेकिन इल्ज़ाम झूठा है, तो इसलिए आपके दिल पर मोहर नहीं लगी हुई, क्योंकि जब दिल पर मोहर लगती है तो कुरान ख़त्म हो जाता है, महव हो जाता है। तो मोहर किन के दिलों पर लगी थी, सुमुन बुकमुन उमयुन फहमला यरजून, ये अहले मक्का के दिल पर और कुफर और शिर्क करने वालों के दिल पर ये मोहर जो थी वो लगी थी। فَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، پھر فرمایا وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ کی عادت کیا ہے کہ باطل کبھی پھولتا نہیں ہے، پھلتا نہیں ہے، اس کو پائیداری نہیں ہے. یمحو جو ہے اس کا روٹ ہے محو کرنا نا، مٹانا، میم ہا واو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حق جو ہے وہ حق بن کر رہے گا، وہ سچ بن کر رہے گا، اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی. اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالی جو ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کے باطل کے دعووں کو مٹائے، انہیں چلنے نہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا، جو قرآن کو پیش کیا، تو اللہ تعالی جو ہے آپ کی دعوت، قرآن کی دعوت جو ہے اس کو حق بنا دے، اس کو جو ہے وہ غالب کر دے، کیونکہ رسول اللہ سچے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اور وہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ پر الزام دھرتے تھے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اہل مکہ تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو، اور الزام لگانے کی وجہ کیا ہے، نیت کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اہل مکہ کی جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور فوراً دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ کی ترغیب دلائی ہے. ایسی آیات مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں. اللہ اتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ اتنا رحیم شفیق ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو علم و قدرت ہے تو انسان کا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کے لیے زیادتی کرتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن اگر وہ شخص اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہی تو ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف توبہ ہی اللہ اپنے بندوں کی قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کے جو گناہ ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی جو ہے وہ درگزر کرتا ہے. تو یہ آیت کریمہ مومن کو سب سے زیادہ پر امید بناتی ہے کہ مومن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے کے بارے میں کہتا ہے کہ جب بندے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے. یقبل التوبہ عن عبادہ. نمبر دو، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. دوسری بات کیا کہی؟ کہ بڑے حصے کو تو اپنے فضل و کرم سے دنیا ہی میں معاف کر دیتا ہے، برائیوں سے تو وہ ویسے درگزر کر جاتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ اللہ بندے کے حال کو خوب جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جن گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 25 جو ہے سورت الشورا کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے जो है वो तौबा की हकीकत बताई है और अपनी माफ़ी जो है उसका अंदाज़ बताया है। तो तौबा किसे कहते हैं? लौटना, रुजू करना। और सही तौबा क्या होती है कि आप जो गुनाह कर रहे हैं ना, फौरी तौर पर उसको छोड़ दें। नंबर दो, जो गुनाह आपने किया है, इंसान से जो भी गुनाह हो जाता है उस पे गिल्टी हो, नदामत हो। तीसरा, ये आइंदा फिर नेक काम आप जो करने शुरू कर रहे हैं फिर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए। मसलन आपने जो है वो किसी इंसान के साथ ज्यादती की है, अब इसकी तौबा कैसे हो सकती है? हकूकुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं करता। ये ऐसा गुनाह है जब तक के बंदे माफ़ ना कर दें अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो फिर क्या करना है? मसलन आपने कोई विरासत में हिस्सा किसी से, आपने क्या किया कि किसी का विरासत का हिस्सा किसी का था माल और आपने अपने नाम लगवा लिया, तो इसका जो है वो नतीजा क्या निकलेगा? जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आपको उसका वो माल उसको वापस करना चाहिए। इसी तरह बैतुल माल के माल में कोई खयानत की है तो आपको रकम बैतुल माल के अंदर जमा करवानी चाहिए। ये है तौबा कि जिसका हक छीना है, जिसको महरूम किया है, आप उसको फिर अदा करें। इसी तरह किसी की गीबत और चुगली की है तो वो शख्स जिंदा है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो उससे माफ़ी मांगें, और अगर आपको लगता है कि माफ़ी मैं मांगूंगी, जाके उसको बताऊंगी ना तुम्हारी गीबत की थी, तो ये तो और फितना खड़ा हो जाएगा। तो फिर आप जिन लोगों के सामने गीबत किया उन लोगों के सामने उसकी खूबियाँ बयान करें, और कोई यानी उसका जो है कुछ ना कुछ अपने ऊपर जो है अपने ऊपर कुछ नाफिज करें कि किसी को सताया है, किसी को बुरा भला कहा है, तो किसी न किसी मुमकिन तरीके से उसको राज़ी करने की आप कोशिश करें। तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह के यहाँ जो है वो मतलूब है, और इस पे हमें भी अपने अमलों का जायज़ा लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयात हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, बस पढ़कर गुजरने वाली नहीं है बल्कि अपने अमाल को बदलने वाली हैं, पहरों बैठ कर ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने वाली हैं। तो आयत नंबर 25 में तौबा और इस्लाह की तरगीब दिलाई गई है कि जब तुम चाहो तो तौबा इस्लाह करके अपने आप को अल्लाह के गज़ब से बचा सकते हो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बंदों के गुनाहों से बड़ा दरगुजर करने वाला है। याद रखो उसे खूब पता है तुम अल्लाह से अपना कोई जुर्म छुपा नहीं सकते। वयस्तजीबुल लजीन आमनु वामिलुस सालिहाती वयजीदुहुम मिन फदलिही, वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है, अपने फजल से इनको और ज्यादा देता है। वल काफिरूना लहुम अजाबुन शदीद, और जो कुफर करने वाले हैं उनके लिए तो शदीद अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने दो रवैये बताए हैं और दो ही अंजाम बताए हैं। अब आप देख लीजिए कि आप जो हैं किन लोगों में शामिल होना चाहती हैं कि जिन पर दुनिया में भी अल्लाह का इनाम हो और आखरत में भी अल्लाह का इनाम हो। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू हमें इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले कि जिन पर तेरे इनामात की बारिश है, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं, जो तेरी तरफ रुजू करने वाले हैं, जो तेरी तरफ लौट कर आने वाले हैं। ऐ अल्लाह तू हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले। फिर आप देखिए आयत नंबर 27 है। आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है एक बुनियादी उसूल जो है वो बयान किया है कि दुनिया में लोगों को जो हाजत और ज़रूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हर एक की हाजत और ज़रूरत के मुताबिक रिज्क अता करे, बल्कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह ताला जिसके लिए जितना चाहता है उतना रिस्क जो है वो नाजिल कर देता है। आयत नंबर 27 का शाने नुजूल, बाज़ रवायात से पता चलता है कि ये आयत उन मोमिनीन के बारे में नाजिल हुई जो काफिरों की मालो दौलत देखकर तमन्ना किया करते कि ये वुस्सत और फराखी हमें भी हासिल हो जाए। एक रवायत में आता है हज़रत ख़बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल बताया जाता है वो कहते हैं हज़रत अख़बा बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हो कि हमने बनू कुरैज़ा, बनू नदीर और बनू कैनका के मालो दौलत को देखा तो हमारे दिलों में भी मालदारी की तमन्ना पैदा हुई, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई। हज़रत अमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा में से बाज़ हज़रात ने रसूल अल्लाह के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अल्लाह ताला हमें मालदार बना दे, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कायनात का जो निज़ाम है वो उसे हकीम और ख़बीर अल्लाह की ज़ात जो है वो चला रही है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम मईशत की तरफ इशारा किया कि मेरा निज़ाम मईशत जो है ये हिकमत से माला माल है। पिछली आयात में आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला मोमिनों की इबादत कबूल करता है, उनकी दुआएं कबूल करता है, और फिर बाज़ औक़ात मोमिनों के दिलों में ये सवाल पैदा हो जाता है कि जब हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम इतने गरीब हैं, हम इतने परेशान हाल हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल क्यों नहीं करता। इसी का जवाब दिया है वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही, अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिज़्क़ दे देता लबगौ फिल अर्दी, तो वो ज़मीन में सरकशी का तूफ़ान खड़ा कर देते। वलकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और वो उन पर निगाह रखता है। अल्लाह को खूब पता है कि मेरे बंदों के हालात क्या हैं, और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों के हालात से वाकिफ़ होने के बाद फिर जितना चाहता है उनको अता करता है। तो रिज़्क़ की महदूद मकदार का नाजिल करना इस वजह से नहीं है कि अल्लाह के खजाने थोड़े हैं, तो बल्कि क्या है, ये अल्लाह का निज़ाम मईशत है और ये अल्लाह की मर्जी है कि जिसको जितना चाहे वो दे। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 28 है, 28। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तारुफ करवाया है कि अल्लाह जो है उसकी कुदरत के रहमत के करश्मे क्या हैं। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैज़ा, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा मिन बाद मा क़नतु वयन्शुरु रहमता वहुवल वलीयुल हमीद, वही तो है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ वली है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो मायूस हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं कि उन्हें बारिश की ज़रूरत होती है, फसलें ख़राब हो रही होती हैं, सूख रही होती हैं, और वो नाउमीद हो रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की पैदावार में जो सबसे मुफीद और अहम चीज़ है बारिश, अल्लाह ताला उसको नाजिल करता है। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, वही अल्लाह तो है जो कि बारिश को नाजिल करता है। मिन बाद मा क़नतु, बाद इसके कि लोग मायूस हो चुके होते हैं। वयन्शुरु रहमता, और वो अपनी रहमत को फैला देता है। वहुवल वलीयुल हमीद, और वही काबिल तारीफ़ है, और वही काबिल तारीफ़ वली है। तो अल्लाह से जब बारिश मिलती है, जब फसल तैयार होती है, फसल लहलहा उठती है, तो ये बारिश का नाजिल होना ये इस बात की दलील है कि उनकी मायूसी को जो है वो खुशियों में किसने बदला, आसमान के बंद दरीचों को किसने खोला, आसमान से पानी किसने नाजिल किया कि ज़मीन ने सोना जो है वो उगला, तो ये अल्लाह की ज़ात है। तो रिज़्क़ जो है किसी देवता या किसी देवी या किसी शरीक की मीरास नहीं है, बल्कि रज़ाक जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। तो वो अल्लाह जो इन चंद दिनों में लोगों को रिज़्क़ से महरूम नहीं करता, तो वही अल्लाह है जो कि इस कायनात का निज़ाम जो है वो चला रहा है, और वही काबिल तारीफ़ वली है। तो शिर्क करना लोगों छोड़ दो। वमिन आयातिही, और ये भी उसकी निशानियों में से है, खल्क़ुस समावाती वल अर्दी, कि उसने ये ज़मीन और आसमान जो हैं वो पैदा किए, यानी खल्कु पैदाइश, ये भी उसकी निशानियों में से है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश। वमा बस्सा फीहिमा मिन दाबा, और ये जानदार मखलूक़ात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, یہ جاندار جو ہیں ان کو پھیلا دینے پر قادر ہے, اور جب اللہ چاہے گا تو ان پھیلے ہوئے کو اکٹھا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اور آیت نمبر آپ دیکھیں کہ آپ نے آیت نمبر 29 میں لفظ پڑھا ہے بسہ, یا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. بسہ جو ہے اس طرح پھیلانا کہ اس کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں. گرد و غبار کو بھی کہتے ہیں, شمع کے پروانوں کو بھی کہتے ہیں. کل فراش المبسوس, قرآن میں اس کے لیے 6 لفظ آئے ہیں اور بسہ کا 6ٹا درجہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ آیا ہے یہاں پر دابتن, اور دابتن زمین پر چلنے پھرنے والے کے لیے عام ہے, جس میں جن انسان تمام حیوانات شامل ہیں, جن کی شکلیں رنگ زبانیں سب ایک دوسرے سے قطن مختلف ہیں. تو روئے زمین پر پھیلے ہوئے سے مراد یہ سب چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کو لائے گا تو ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. وما اصابکم من مصیبت, اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, اور بہت سی تمہاری غلطیاں جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے, درگزر کرتا ہے. جہاں تک مخلص مومن کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چپتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور وہ مصیبتیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مومن برداشت کرتا ہے تو وہ صرف کوتاہیوں کا کفارہ نہیں بنتے, بلکہ اللہ کے ہاں درجات کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو تکلیفیں انسان اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہیں کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں, ہوپ ہے. اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصیبتیں بن جاتی ہیں جو تمہیں گناہوں کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہیں, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک کی زندگی میں اتنی غلطیاں اور اتنے گناہ, اور اگر اللہ چاہتا تو اگر ہمیں پکڑتا تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا. اور ہم جو دنیا میں آج بھی زندہ ہیں, یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وما انتم بموجزین فی الارض, اور تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہیں آیت نمبر 32 سے پینتیس تک, یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت, علم و حکمت اور رحمت کا ایک مظہر, سمندروں کے مانند چلنے والی کشتیاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں, الجواری, جواری, جیم را یا اس کا روٹ ہے. کشتیوں کے لیے قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں, ایک جو ہے وہ فل کا ہے, دوسرا جو ہے وہ سفن کا ہے, سفینہ, اور تیسرا جوار کا ہے. اور جیم را یا کے معنی ہے چلنا, بہنا, پانی, ہوا کی طرح چلنے والی چیزوں کے لیے. इसी एतबार से बादवानी कश्ती जो हवा और पानी के रुख और बहाव की मुनासबत से चलती है तो उसे कहा जाता है। वमिन आयाते ही और उसकी निशानियों में से हैं फिल बहरी, वमिन आयाती और उसकी निशानियों में से हैं अल जवारी कश्तियाँ, ये जो समंदरी जहाज़ हैं, फिल बहरी समंदर में, कल आलाम मानित पहाड़ों के, पहाड़ों के लिए कुरान में एक तो आपने जिबाल का लफ्ज़ पढ़ा है, दूसरा आपने रवासिया का पढ़ा है, और तीसरा सखर का भी आया है, और चौथा यहाँ पे आलाम है। और आप देखें कि आलाम जो है अलम की जमा है, अलम जो है ये निशान, झंडा, रोशनी का मीनार और पहाड़ को भी कहते हैं। आलाम हर उस चीज़ को जो अपने हमसरों से मुमताज़ हो। पहाड़ जो हैं दूर से नज़र आते हैं ना, तो इसलिए उनको भी आलाम कहा जाता है। नामवर जो शख्सियतें होती हैं वो भी आलाम कहलाती हैं। तो आयत नंबर, ये जो आयत नंबर 32 है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो जहाज़ है समंदरी जहाज़, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी कुदरत की निशानी है, और दुनिया की कामयाबी पर जो लोग मغرور हो जाते हैं उनको अल्लाह ताला एक पैगाम दे रहे हैं कि इन यशा, अगर अल्लाह चाहे, अगर वो चाहे, युस के निर्रीहा तो हवा को साकिन कर दे, रोक दे, फयज लल्ला, और पस वो जो है वो क्या क्या हो जाए। अब आप देखें कि यहाँ पे यज ललना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी हैं, आप पहले ही पढ़ चुकी हैं ना, जैसे जिल्ले सुभानी और साए के लिए भी ये लफ्ज़ पढ़ा जाता है, और असल में इसके मानी होते हैं कि हो जाना, रह जाना। तो फयज ललना, बस वो रह जाएं, वो हो जाएं, वो जो जहाज़ हैं जो के समंदरी जहाज़, जो कश्तियाँ हैं पहाड़ों की तरह खड़ी, अगर हवा रुक जाए, क्योंकि हवा से वो चलते हैं, हवा रुक जाए तो फयज़लना, तो वो रह जाएं, रवाकिदा खड़े। रवाकिदा जो है रा काफ दाल इसका रूट है, और तराजू का बराबर होकर ठहर जाना, रकद शम्स सूरज का सर पर आकर ठहरता हुआ मालूम होना, किसी हरकत की भी चीज़ का अपने सहारे कायम और साबित होकर ठहर जाना। तो अगर हवा रुक जाए फयज़लना, तो हो जाए रवाकिदा ठहरे हुए, खड़े के खड़े, अल्लाह ज़ाहर ही समंदर की पीठ पर, यहाँ पे ही की ज़मीर समंदर के लिए आई है, तो ये जहाज़ समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। तो इन भारी भारी जहाज़ों को, कश्तियों को जो समंदर के अंदर पहाड़ों की तरह हैं, इन्हें समंदर के अंदर कौन चलाता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल्लि कुल्लि सबारिन शुकूर, इसमें बड़ी निशानी है हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र रखने वाला हो। तो अच्छे और बुरे तमाम हालात में बंदगी के रवैये पर कायम रहना। सबार और शुकूर किसे कहते हैं? मुसीबत आने पर बहुत सब्र करने वाला और नेमते मिलने पर बहुत शुक्र करने वाला। तो सबार और शुकूर वो लोग होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम हालात में बंदगी के रवैये पर साबित कदम रहते हैं। और प्यारी बहनों, ये बहुत अहम है लेकिन मुश्किल है। जो ही इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, नेमतें मिलती हैं, तो अल्लाह को भूल जाता है। मसलन आप देखें कि बहुत से लोग आम ज़िंदगी में स्कार्फ लेते हैं, हिजाब, सतर, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। शादी का मौका आ गया तो वही माएँ कहती हैं ये तो मेरा आखिरी पुत्र है, मेरा तो एक ही पुत्र है, और उसकी शादी का वक्त है, तो अब वो क्या करती हैं कि जो है वो अब वो जिलबाब, सतर, सब चीज़ें उतार कर रख देती हैं, मिक्सिंग हो रही है, अल्लाह की हदों को तोड़ा जा रहा है। और यानी खुशियाँ, खुशी दो मौके ऐसे हैं जिसमें आपको पता चल सकता है कि आपकी तरबियत कितनी हुई है। मसलन आपने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया है तो आप सोचती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। यकीनन आप चेंज हुई होंगी, और अल्लाह आपको चेंज करे, तब्दील करे, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, और फ्रॉम दी बॉटम ऑफ योर हार्ट और फ्रॉम दी यानी हर तरह से, यानी इब्तदा से इंतहा तक, अल्लाह आपको भी और मुझको भी, तमाम मुसलमानों को बेहतरीन मुसलमान बनाए। और हमें ये दुआ करनी चाहिए क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। अच्छा, आप अपना जायज़ा कैसे लेंगी, मुहासबा कैसे करेंगी? बहुत ही गम की कैफियत हो, बहुत ही सख्त सदमा पहुंचा है किसी भी बात पे, किसी
किसी भी रवैये पे, कोई डेथ खुदा ना खास्ता हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई माल के वजह से नुकसान हुआ है, खुदा ना खास्ता बच्चों की कोई आजमाइश है, खुदा ना खास्ता अपनों ने जिनसे बहुत ही आपके हमीमुन थे, वलीउन हमीम थे, बहुत ही जिगरी आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ मामला हो गया, कोई फ्रॉड कोई बात हो गई है, और गैर यकीनी गैर मुतवक्को कोई चीज़ हो गई है, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसे मौके पर आप देखें कि आपके ईमान की कैफियत क्या है, इंतहाई तकलीफ़ में, सदमे में, परेशानी में, और इंतहाई खुशी में। जैसे पिछले दिनों एक औरत कह रही थी कि मेरा जहाँ भी रिश्ता चलता है तो होता नहीं है, तो अब मैंने नमाज़ें पढ़नी छोड़ दी हैं, या फिर जब नेमतें मिलती हैं तो नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं। बकरा ज़िबा करना और नमाज़ पढ़नी और सदका करना और कुरान पढ़ना कब याद आता है? खुदा ना खास्ता जब कोई मुसीबत और परेशानी होती है। जो बेहतरीन लोग होते हैं वो सर्दी और गर्मी, आसानी और तंगी, अच्छे और बुरे हालात, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। तकदीर इलाही जो है, खा कितना ही उनको ऊंचा उठा के ले जाए, उड़ा कर ले जाए, वो उसे अपना कमाल नहीं समझते, अल्लाह का एहसान समझते हैं, और अल्लाह उन्हें कितना ही नीचे गिरा दे, वो अपनी महरूमियाँ जो हैं उस पर शिकवा नहीं करते, उस पर वो टूट कर नहीं रह जाते, गिर नहीं जाते, बड़े वक़ार के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ। तो अमल का असूल क्या निकला? स्माइल एंड बी हैप्पी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके दिल में गमों के पहाड़ थे, पैदा हुए तो यतीम और सारी ज़िंदगी मसाइल और मुश्किलात में रहे, लेकिन सहाबा ने उनसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला और किसी को नहीं देखा। फिर आप देखें आयत 34 और 35 में फरमाया, ओ युबिकहुन्ना, युबिकहुन्ना, इसके क्या मानी है? वो बाकाफ, हिलाक होने के लिए कुरान में 13 लफ्ज आए हैं, इसका 11वां दर्जा है। दो चीज़ों के दरमियान हायल होने वाली चीज़, इधर आग उधर खाई, न पाए रफ्तन न जाए मानदन। मसलन आप दो मुश्किलों के दरमियान में फंस गए हैं, आप सोचते हैं, जैसे बाज़ औक़ात कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है ज़िंदगी में कि आप सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं ये काम कर लेती हूँ, तो आप देखती हैं कि वहाँ तो ऐसे लग रहा है कि वहाँ तो खाई है, अगर उधर कदम रखती हूँ तो खाई है, फिर आप सोचती हैं अच्छा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ती, मैं पीछे चली जाती हूँ, तो आप देखती हैं कि इधर तो आ गए। मसलन आप गाड़ी चला रही हैं और वहाँ पे बहुत ही रश है और आप निकलना चाहती हैं और आपको आगे जाना है और बहुत ज़रूर जाना है, आगे भी आप देखें कि पूरी लाइन लगी हुई है, पीछे भी लाइन लगी हुई है, आप सोचते हैं कोई शॉर्टकट ले लें, तो अब कोई सूरत हाल नहीं है ना। तो बाज़ का ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात पेश आते हैं, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ओ यू बिक हुन्ना, या अल्लाह ताला जो है वो तबाह कर दे इनको, बिमा कसबू, सबब इसके जो उन्होंने कमाया, व याफू अन कसीर, और माफ़ कर दे बहुत से, या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए उनके चंद ही करतूतों की पादाश में उन्हें डबो दे। यानी वो लोग जो जहाज़ों में बैठे हुए हैं समंदर के अंदर जो चलने के लिए तैयार हैं, अल्लाह चाहे तो ओ यू भी खुन्ना वो उनको तबाह कर दे, बिमा कसबू, उनके गुनाहों की वजह से, और अगर अल्लाह चाहे व याफू अन कसीर, और उनके बहुत से गुनाहों से उनसे दरगुजर कर ले। तो ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की ज़ात है, चाहे तो जहाज़ों को सतह समंदर पर साकिन कर दे, चाहे तो मुसाफिरों समेत समंदरों को, चाहे तो मुसाफिरों समेत जहाज़ों को समंदरों के अंदर गर्क कर दे, और चाहे तो बहुतों के गुनाहों से वो दरगुजर कर ले। और जब अल्लाह बहुतों के गुनाहों से दरगुजर करता है तो क्या करता है? वह याफ़ उन कसीर, तो फिर उनको खैरियत से, भंवर से निकाल कर साहिल पर ले आता है। तो अल्लाह को इन तीनों चीज़ों का इख्तियार है। पहला इख्तियार आपने पढ़ा आयत नंबर 33 में कि हवा रोक दी है और जहाज़ खड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह गए। दूसरी चीज़ जिस पर अल्लाह कादिर है, चाहे तो उनको पानी के अंदर गर्क कर दे, मुसाफिर उसके अंदर बैठे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उनको खैरियत से साहिल समंदर पर पहुंचा दे। तो जब कामयाबी मिले तो क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। और जब मुसीबत आ जाए, कोई कोताही
उसको अपनी कोताही का नतीजा समझना चाहिए और सब्र करना चाहिए और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। वयालम अल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना मा लहुम मिन महीस, और उस वक्त हमारी आयात में झगड़ा करने वालों को पता चल जाए कि इनके लिए कोई जाय पनाह नहीं है। तो जब यानी समंदर में इन तीन हालतों में से कोई हालत इंसान को पेश आती है, फिर उस इंसान को पता चलता है कि वो जो शिर्क कर रहे थे, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, जो अल्लाह से अल्लाह को भूले बैठे थे, तो उनको पता चल जाता है कि मा लहुम मिन महीस, कि इनके लिए तो कोई जाय पनाह नहीं है। हा या स्वाद, और इसके मानी हैं ऐसी जगह जहाँ तंगी से निजात हो सके, पनाह मिल सके या फिर पनाह गाह। तो ये था हमारा आज का सबक। और ये जो आखिरी आयात हैं, जैसे समंदर की मिसाल है तो इसको आप खुश्की पर भी ले सकती हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में जो हमारी गाड़ी चल रही होती है, तो उस वक्त जब मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां आती हैं, तो उस वक्त क्या आप सब्र करती हैं? जब अल्लाह नेमतों की बारिश करता है तो क्या आप शुक्र करती हैं? और क्या करती हैं, कहीं आप किबर तो नहीं करती? तो प्यारी बहनों, आज का हमारा ये जो सबक है सूरत अशूरा और इसकी आयत नंबर 20 से 35 तक, ये हमें पैगाम देता है कि हम जो हैं अपने आप को अल्लाह की तरफ झुकाएं, अल्लाह के मुती हों, और आखिरत जो है, आखिरत की खेती जो है उसको तैयार करें। अद्दुनिया मिजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और इसके लिए मुझे और आपको उसके अंदर जो है वो बीज बोने हैं। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इश्क करना है। मुझे ये कहानी, अरबी ज़बान की ये कहानी है, एक हकायत है, तारीख़ी हकायत, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर इसको याद करती हूँ। और मैं अपने सबक के आगाज़ में, मैं अपने सबक के इख्तिताम में आपको सुनाना चाहती हूँ कि किसी हुक्मरान ने एक बहुत बड़ा दरबार सजाया, इसमें बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें रखी। चीज़ों की तरतीब ये थी कि निस्बतन कम कीमती चीज़ें दरवाजे के पास थीं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा जाता ज़्यादा से ज़्यादा कीमती चीज़ें आती जातीं। दरबार के आखिर में बादशाह ख़ुद तख्त बिछा कर बैठ गया और लोगों में आम ऐलान कर दिया कि जिसका जी चाहे आए और दरबार के अंदर जो कुछ है उसमें से जो चाहे ले ले। ऐलान सुना तो लोग टूट पड़े, ज़ाहिर है, अशिया उठा उठा कर ले जाने लगे। अब हर शख्स का ज़र्फ पता चलने लगा। जिन्होंने अच्छा सामान देखा ही नहीं था, वो तो दरवाजे के पास से ही जो चीज़ें नज़र आ रही थी उनसे मुतासिर हुए, वही उठा कर ले गए, वो उनको बहुत ही कीमती लग रही थी। कुछ लोग जो थे वो थोड़े और आगे बढ़े तो उन्हें थोड़ी और कीमती चीज़ें नज़र आई, उन्होंने वो उठाया क्योंकि उनका ज़ौक थोड़ा और आला था। कुछ लोग जो थे वो उससे भी ज़्यादा अच्छा ज़ौक रखने वाले थे, वो और आगे गए। तो यानी लोग जो थे, कोई करीब से थोड़ा, कोई थोड़ा और आगे, कोई थोड़ा और आगे, कोई थोड़ा और आगे, तो इस तरह चीज़ें हासिल करने लगे। इस दौरान जब लोग चीज़ें उठा उठा कर ले जा रहे थे, एक बेनियाज किस्म की बुढ़िया लाठी टेकती हुई आगे आई और दरबार के अंदर इधर उधर देखते हुए उसने आगे बढ़ना शुरू किया। वो दाएं देखती, वो बाएं देखती, चीज़ों को देखती गई और आगे आगे चलती गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, उसकी नज़रों में कोई चीज़ जच ही नहीं रही। यहाँ तक कि वो वहाँ पहुँच गई जहाँ के इससे पहले कोई उम्दा से उम्दा ज़ौक वाला भी नहीं पहुँचा था। लोग बड़े हैरान थे कि ये बूढ़ी सी औरत, लाठी टेकने वाली, चाहती क्या है? क्या इतनी खूबसूरत और कीमती चीज़ों में से कोई चीज़ भी पसंद नहीं आई? अब बुढ़िया वहाँ पहुँच गई जहाँ बादशाह खुद बैठा था और उससे पूछने लगी, तुमने यही ऐलान किया है ना कि इस दरबार की जो चीज़ जो शख्स चाहे ले ले? बादशाह ने कहा कि हाँ, ऐलान तो यही किया। बुढ़िया ने बादशाह का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। अब मेरा टॉपिक इस वक्त ये नहीं है कि ये कहानी कहाँ तक सही है और इसकी सदाकत क्या है, लेकिन मकसद ये है कि इससे इखलाकी सबक क्या लगता है, कि इससे इखलाकी सबक क्या मिलता है। अब आप देखें कि बादशाह ने जो दरबार लगाया था वो तो चीज़ें देने के लिए लगाया था ना, और बहुत ही कीमती चीज़ें दे रहा था, लेकिन वो जो कीमती, असल कीमती चीज़ थी वो खुद बादशाह था। तो बुढ़िया ने जब बादशाह से बादशाह मांगा तो वो तो ख़जानों की मालिक बन गई ना, बादशाह के सारे ख़जाने जो थे वो उसके कदमों में आकर ढेर हो गए।
तो प्यारी बहनों, आइए हम अल्लाह से अल्लाह को मांगते हैं, और जब हमारी नियत जो है वो अल्लाह को राज़ी करना होगा और हम अल्लाह को चाहेंगे, तो अल्लाह जो है हमें दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। तो इस सबक से, इस कहानी से अमल का उसूल क्या निकलता है? मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़तों का ख्याल है। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़तों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौके विसाल है। और जुज ज़ौक तलब, जुज शौक सफ़र, कुछ और मुझे मंजूर नहीं। ए इश्क बता अब क्या होगा, कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं। तो हमें जो है वो अल्लाह की रज़ा चाहिए, और हमें जो है वो अल्लाह को राज़ी करना है। कभी आह लब से निकल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम दे रहे हैं, बस सब अल्लाह की याद में और अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो दुनिया नहीं, आखिरत है। और आखिरत जो है उसका मामला सिर्फ उसको मान लेने से नहीं चलता, बल्कि इतना हकीकी और इतना अहम मामला है कि आखिरत जो है वो मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी पर छा जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका।